ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। बोलो। ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान की ना परम भाग्य है हमारा, इतने सुंदर सुंदर स्थानों में हम जा रहे हैं जहां भगवान ने अपना व्यक्तिगत लीला किया। तो घर में गए हम जहां पर रहते थे भगवान, उनके मैया को मिले, उनके बाबा को मिले, उनके भैया को मिले, उनके दोस्त से मिले। मिले कि नहीं मिले? खाली देख के आए? दिल से मिलो, दिल से संपर्क बनाओ। ये सारी यात्रा जो है ना वो सगाई करने के लिए। यात्रा का एक पर्पस होता है सगाई, भगवान से सगाई, हमारी रिश्ता हो जाए, इसलिए हम घूमते हैं। हा? ये धाम जो है ना ये बहुत ही पवित्र धाम है। ये सब जीवन का परमोच्च दान भेंट आपको दे सकता है, देने वाला है। अब ये जगह पर हम जो आए ना, ये ब्रजवासियों का एक बहुत फेवरेट स्थान है। इसमें ब्रजवासी लोग दाल बाटी चूरमा का पिकनिक करते हैं। इस जगह पर आकर दाल बाटी चूरमा बनाते हैं अपने हाथ से और वन भोजन करते हैं रेगुलरली। ब्रजवासियों का ये विशेष क्या कहते हैं पसंदीदा कार्य है। रेगुलरली ऐसे वनों में जाते हैं, मांडीर वन में जाते हैं, इधर आते हैं। आपने दाल बाटी चूरमा खाया है? दाल बाटी चूरमा नहीं खाया? तो फिर खाया क्या आपने? एनीवे, वो दाल उड़द दाल की बनती है और बाटी जो है ना वो सनातन गोस्वामी महाराज थे ना, वो जो भजन उनका कुटीर दिखाया ना मैंने आपको, वो जब भिक्षा करते थे तो उनको आटा मिलता था। आटा तो वो आटा जमुना जी के किनारे में जाकर जमुना जी के जल में भिगाते थे और उसका गोली बनाते थे। जैसे आप बनाते ना रोटी बनाने के लिए, ऐसा गोली बनाते थे और वो सीधा अग्नि में रखे उसको भूनते थे। अपनी भाषा में क्या, बेक बेक करते थे उसको। तो वो भुनी हुई जो भुनी हुई, छोड़ो छोड़ो, वो उसके हिस्से में था, गया वो, भूल जाओ उसको, अभी भूल जाओ, अपना ध्यान को यहाँ भंग मत करो। जो आपका नहीं था वो गया, जो आपका है बचा के रखो। क्या
फोन करके बता देना
किस चीज का?
कृष्णमय भैया को अभी दो एक दिन बाद आप आओगे ना भोजन प्रसाद के लिए,
तब फोन करूंगा।
हाँ फोन कर देना।
तो मैं क्या कह रहा था, दाल बाटी, तो उसको वो अग्नि में भूनते हैं उसको, और सनातन गोस्वामी बिना नमक के उसको ऐसे ही खाते थे। अभी लोगों का ध्यान उधर है, दाल बाटी बन रही यहाँ पर, कहा देखो वो अपनी बाटी ले गया, अपनी बाटी तो बनाओ। ऐसा है हमारे पास है ना, कई चीजें हैं, लेकिन वो जब कोई छीन लेता है ना तो दिल तड़पता है बहुत, नहीं तो पड़ी रहती है वो, लेकिन जब कोई लेता है तो फिर वो याद आती है उसके, अरे क्या करें उसका। ऐसा ही है दुनिया का हर चीज, बहुत दर्द होता है यहाँ पर। सबसे अधिक दर्द मालूम है कभी होता है, जब मोबाइल गुम होता है, सबसे अधिक दर्द। और जब वो डिस्चार्ज होता है तभी वो दर्द होता है, ले गया तो फिर ऐसा कि कोई दिल ही लूट गया मेरा ऐसा लगता है। एक बार गर्लफ्रेंड जाएगी चलेगा, लेकिन मोबाइल नहीं जाना चाहिए, ऐसा आजकल जमाना आ गया है। यानी बे यहाँ पर तो वातावरण ऐसा है ना, भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित कैसे करना है, ऐसा वातावरण है यहाँ पर। तो वो दाल तो आगे आ गई, लेकिन बाटी का भोजन वो करते थे। तो ठाकुर जी ना, वो भी उनको भिक्षा में मिले थे, मथुरा में गए थे वो भिक्षा मांगने के लिए। तो भगवान ने स्वप्न दिया था कि कल आपको भिक्षा में मैं ही मिलूंगा, और उनको भी स्वप्न दिया जिनके पास थे कि इनको मुझे दे देना भिक्षा में रोटी के साथ। तो मथुरा वृंदावन लेके आए थे, वृंदावन मथुरा से। और फिर ठाकुर जी एक दिन बोले उनको, अरे सनातन कितने दिन मुझे वो बिना नमक का बाटी खिलाओगे। तो बोलते आप पहले आपको बताया था मैंने जब आप मेरे संग आ रहे थे कि देखो मैं तो फकीर आदमी हूँ, भिक्षा करने वाला हूँ, मेरे पास कुछ होता नहीं है, तने कोई भी जो मिलेगा आप मुझे अर्पण करना, भोग में मैं आराम से रहूँगा आपके साथ। अभी बोल रहे नमक चाहिए, कल बोलेंगे मीठो चाहिए, मैं कहाँ से दूंगा आपको मीठा, यही है खा लो। तो वो है बाटी, वो फेमस हुई सनातन गोस्वामी की वजह से। आज तो वो बाटी को लोग घी में तलते हैं, उसके अंदर मसाला भरते हैं, उसके साथ नमक मिर्च सब आलू जीरा सब डालते हैं, उसके अंदर एक मसाला वाली बनती है डीप फ्राई, सुना आपने? नहीं सुनो मत सुनो आप, आपके लिए अच्छा नहीं हो। और एक भुनी हुई रहती है, और भून के उस पर घी डालते हैं, और फिर दाल बाटी चूरमा की पार्टी करते हैं। कोई बात नहीं, वो ब्रजवासियों का बहुत। और दाल बाटी जब कहते हैं ना तो उसके अंदर एक और शब्द छुपा हुआ है, वो क्या पता है? चूरमा बोलते नहीं है, दाल बाटी बनवा दो ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या? दाल बाटी और चूरमा भी बनवा दो। चूरमा वो मीठा होता है, बहुत प्रेम से बनाते हैं उसको। तो ब्रजवासियों की पार्टी मतलब ये बनता है, शादी में भी बनता है। तो ये ब्रजवासियों का बड़ा प्यारा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन ये वैसे ही पौराणिक रूप से बहुत दिव्य स्थान है। ये आशेश्वर महादेव जी का मंदिर है, पीछे आपके आशेश्वर कुंड है, पीछे देखो बंदर लोग, आप जो बोल रहे हो सुन रहे क्या? आप उनकी बोली को सुनते हो? सिंपल लॉजिक है, वो अपनी बोली में बोल रहे हैं जो करना है, और आप अपनी बोली सुनते रहो। उनको आपकी बोली में 1% इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको है, आप दिलो जान से देख रहे हैं उसको। तो ये आशेश्वर कुंड है, ये आशेश्वर महादेव जी हैं। जब भगवान आते हैं ना तो भगवान का कौलोक धाम में जहाँ पर वो रहते हैं ना, वहाँ पर उनका केवल 16 साल का रूप होता है, नवयौवन, हमेशा 16 साल के रहते हो। तो उनके बाल रूप का दर्शन वहाँ पर नहीं है। जब वो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तब उनका बाल रूप का दर्शन होता है, वो गर्भावस्था भी माँ की होती है उनकी, उनका जन्म भी होता है, फिर वो रेंगते हैं, वो गोद में दूध पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनका बाल रूप का दुर्लभ दर्शन करने के लिए सभी देवता लोग आते हैं, जो यहीं पर होता है केवल। ये अंतर है गौलोक वृंदावन और भौम वृंदावन, यहाँ का वृंदावन भौम वृंदावन, जो भूमि पर है भौम वृंदावन, और वो गौलोक वृंदावन, उसमें अंतर यही है। और एक अंतर है कि वहां पर राक्षस नहीं होते हैं। भगवान का वीर रस, युद्ध करने का जो इच्छा है ना, वो पूरा करने के लिए वहां के कुछ भक्त लोग यहाँ आकर राक्षस बन जाते हैं, और फिर उनके रियल में लड़ते हैं, रावण कुंभकर्ण सब भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के ड्रामा में अपना रोल अदा करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए। वहां पर वो झूठ मूठ की लड़ाई होती है, यहाँ पर रियल लड़ाई करते हैं, इतनी भयंकर लड़ाई करते हैं कि देवता लोग भी कांपते हैं और कांप कांप के देखते हैं, पता नहीं कौन जीतेगा इसके अंदर। तो कभी बादल के पीछे जब भगवान हारते हुए दिखाई पड़ते हैं तो बादल के पीछे छुप जाते हैं, भगवान जीतते हुए नजर आएंगे तो बादल के बाहर आते हैं। क्योंकि अगर समझो भगवान हार गए तो वो जो भगवान को हराने वाला है वो हमको पकड़ के पीटेगा। तुम लोग वहां पर से देख रहे थे ना मजा, आ जाओ तुमको ये चखा था मजा, इसलिए वो आगे पीछे करते रहते हैं। देवताओं के अंदर भी पूरी श्रद्धा भगवान के ऊपर नहीं है। अगर पूरी श्रद्धा होती तो सामने आके देखते भगवान का और रावण का युद्ध, लेकिन चुप चुप के देख रहे हैं, उनको पता नहीं है एक्चुअली क्या होगा, डरते हैं वो। डरता कौन है मालूम है आपको? जिनको इस दुनिया में किसी विषय में आसक्ति है वही डरता है, कि जो विषय से आसक्ति है वो निकल जाएगा तो, जैसे कि लड्डू से आसक्ति है छीन जाएगा तो डर लगता है। डरता नहीं ऐसा कोई एक ही व्यक्ति है जो पूरी तरह से विरक्त है और भगवान के चरणों में शरणागत है। भगवान के चरणों में शरणागत जो होता है वही निर्भीड़ हो जाता है, निर्भय हो जाता है। अभय चरणारविंदरी, मतलब क्या, वो चरण जिसका आश्रय लेने से व्यक्ति अभय हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। तो शंकर जी भगवान को दर्शन करने के लिए आप रहे हैं, बाल रूप का दर्शन हा? तो मैया के पास भिक्षा मांगी जाके, ऋषि का वेश बनाकर आए, लेकिन सांप वाप साथ में थे उनके, तो मैया भिक्षा लेकर आई तो कहते हैं मैया मुझे ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मैया के मन में वार्निंग बेल बजती है कि ये कुछ अजीब अलग बात है। आमतौर पर बहुत ही भिक्षा देही करने के बाद हम चावल देते हैं, धान्य देते हैं, फल फूल देते हैं, चले जाते हैं। ये साधु कह रहा है कि नहीं हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए? सोना चाहिए, मोती चाहिए? नहीं वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आप? कहते हैं कि लाला के चरणों का दर्शन चाहिए। तो और बड़ी वार्निंग बेल बजती है मन में। पहले तो कंस के लोग सुंदर स्त्री बनकर आए, फिर गाड़ी बनकर आए, फिर हवा बनकर आए, हाँ फिर कोई बैल बनकर आया, कोई घोड़ा बनकर आया, अभी साधु बनकर आए हैं मेरे लाला को वध करने के लिए। चश्मा नहीं करना, तो मैया ने कहा नहीं आप सब लोग कंस के दूत हो, सब लोग भेष बदल बदल के जहां जहां हम जाते हैं वहां पीछे पीछे आपको हमारे बाल लाला को वध करने के लिए आप आते हो। बिल्कुल नहीं दर्शन दूंगी, ये लेना है तो लो, तो चले जाओ यहां से। और मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, उसके द्वार पटक दिया उनके मुंह पे। तो बड़ी दुखी हो गए शिव जी महाराज, और वहां से सामने है ना वो नंद भवन, इधर से सीधे नीचे आए और यहां बैठे, इस वन में बैठे, इस कुंड के किनारे, और यहां पर उन्होंने रो रो कर भगवान को पुकारा है, रो रो कर भगवान को पुकारा है। नाम क्या पड़ा उनका? आशेश्वर महादेव। भगवान को मिलने की आशा हृदय में रखकर उन्होंने भजन किया है, लेकिन निराश होकर लौटे थे वहां पर। इतना दूर से आए थे, इतनी तमन्ना लेकर कि ठाकुर जी का दर्शन होगा, धन्य हो जाऊंगा, लेकिन इतना प्रयास भी फेल हो गया था उनका। और जिस तरह से माया ने माता ने दरवाजा पटक दिया था, उस तरह से ये लगता था कि कोई आशा नहीं है, कोई भी आशा नहीं है। ऐसे अवस्था में भी उनको आशा थी। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि कहाँ गए प्रसन्नात्मा जी, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि सबसे निराश अवस्था में कोई भी आशा लगती नहीं, उसमें सबसे निराश अवस्था में जो आशा देखता है उस पर भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा वहां आकर्षित हो जाती है जहां पर सबसे निराश अवस्था में भी आशा का अनुभव कोई करता है। तो शिवजी महाराज ने इसी सत्य को यहां पर प्रमाणित करके अपने उदाहरण से स्थापित किया है। सो व्हेन यू सी होप इन द मोस्ट होपलेस कंडीशन इन लाइफ, यू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो जो जिसमें कोई चांस नहीं था भगवान को मिलने का, समझो दोबारा जाते थे, दोबारा मैया क्या बोलती? दोबारा आ गए तुम, ऐसे बोलते ना। तीन बार गए तो क्या बोलती? वही बोलती। सौ बार गए तो क्या बोलती? वही बोलती। मतलब आशा तो है ही नहीं कुछ, वो तो समझ चुकी है, मतलब उसके मन में फिट हो गया कि ये कंस का आदमी है। तो आप क्या और नाटक करोगे आप, जिसके लिए वो हाँ मान जाएगी? वो तो बहुत बालक पर बहुत प्रेम है उसका, वो नहीं मानेगी। तो अभी जिस पर, जिस व्यक्ति को इतना निराश अवस्था में भी आशा है, तो भगवान की कृपा उन पर आकर्षित हो जाती है। तो भगवान भी बालक है ना, गोद में बैठे हैं मैया के, लेकिन तो भगवान तो भगवान ही होते हैं ना, वो मैया की गोद में बैठ कर दूध पी रहे तो क्या हुआ, भगवान तो भगवान ही होते हैं, सबकी जानते हैं मन की, तो जानते हैं कि मेरा भक्त वहाँ बैठ के रो रहा है, कुछ करना चाहिए। माता के संरक्षण कवच का भेद करके मेरे भक्त को दर्शन देना चाहिए। कैसे भेदे माता का सुरक्षा कवच, इतना अभेद्य है वो, तो फिर अपना जो है ना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। कौन सा ब्रह्मास्त्र निकालते हैं? बालक के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र होता है बताओ? रोना। बड़े बड़े हार जाते हैं, हाँ बड़े बड़े हार जाते हैं, तो बड़े बड़े हार जाते हैं तो रोना शुरू करते हैं। तो आम तौर के जो अलार्म बज रहे हैं, 12 बज गए, तो आम तौर पे ना जो भी माता बालक को रिझाने के लिए करती है वो सारा चीज करने लगती है वो, हाँ स्तनपान कराती है, फिर कुछ मिठाई खिलाती है, कुछ खिलौना देती है, एक एक उपाय करने पर, एक एक उपाय करने पर जोरदार रोना शुरू कर देते हैं और ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं, तो सारे उपाय हार जाते हैं और रोना तो बढ़ते जा रहा है। सब सखियां इकट्ठा होती हैं, गोपियां पड़ोस पड़ोस से, गांव से, नंदगांव से सभी आ जाती हैं। कान्हा रो रहा है मतलब क्या, सब काम ठप हो जाता है। जब भी कान्हा रोते ना सब काम बंद हो जाते हैं, एवरीथिंग स्टैंड स्टिल, जब तक रोना बंद नहीं करेगा सब काम बंद। एक बार वो नंदगांव आ रहे थे, गोकुल से ट्रांसफर हो रहे थे ना वहां से, तब बीच में रोना शुरू कर दिया, सारे बैल भी रुक गए, बोलो बैल भी रुक गए, बछड़े भी रुक गए, गोपियां भी रुक गए, सब रुक गए। लाला रो रहा है, उसको शांत के बिना आगे कैसे बढ़ेंगे, उस तरह सब ठप हो गया, सब इकट्ठा दंड भवन में हो गए, इतना जोर से रो रहा है। तो वहां से पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी जो है ना वो पार्वती का अवतार है, वो इस लीला में वो यशोदा और बड़े गोपियों का, गोपियों की गुरु बनकर आती है, तो उसको बुलाया जाता है, वो आ जाती है, वो सांदीपनी की माता है वो पूर्णमासी। सांदीपनी कौन, कृष्ण के गुरु हुए ना वो, वो सांदीपनी मुनि की माता है, वो इतनी बुजुर्ग है वो। तो वो आती है, कहते देखो यशोदा माई, अरे वो जो साधु आए थे ना वो बड़े महात्मा थे, वो सिद्ध पुरुष थे, बड़ी दूर से आए थे वो, और आपने उनको भगा दिया, क्या करे बेचारे, रो रहे वहां बैठ के, उनको बुला लो, शायद उनके आशीर्वाद से रोना रो बंद करेगा ये। तो वो मैया जिसने उस साधु को स्वयं भगा दिया था, उसको निमंत्रण देने के लिए सब गोपियों को भेजती है वो, एकदम नियम से। आप लोग कर सकते हैं ऐसे, किसी का अपमान करके भेज दिया आप, उसी की जरूरत पड़ रही है आपको, तो आप 100 बार सोचेंगे कि उसको कैसे बुलाएंगे, शायद वो अपना अपमान करेगा बाद में रिटर्न में, अभी उसका मौका है, तो आप शायद और कुछ सोचेंगे। लेकिन ये ठाकुर जी के ऊपर मन उनका एकाग्र है, उसी की सुरक्षा के लिए उसको भगाया था, उसी के कल्याण के लिए उसी को बुलाया जा रहा है वापस, ये भाव बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भाव है। तो फिर आशीश्वर जी की आशा फिर प्रकाशित हो जाती है, जो निराश अवस्था में बैठे हैं भाग के जाते हैं, तो फिर वो जिसने दरवाजा मुंह पे बंद किया था वो दरवाजा खोल के ठाकुर जी को गोद में लेकर आती है, रो रहे जोर से, बहुत जोरदार, जाके जैसे चरण छूते ना तुरंत रोना बंद कर देते हैं। सभी देवता भी दर्शन कर रहे हैं आकाश में, पार्वती भी देख रही है, तुरंत रोना बंद कर देते हैं। तो मैया क्या बोलती है, अभी बाबा तुम यहीं रहो, आगे भी कभी रोएगा ना दोबारा बुलाऊंगी आपको, आप तो बड़े विचित्र बाबा हो, आपके आने से रोना बंद कर दिया, माफी चाहती हूं। जब जब लाला रोवे तब तक दर्शन दीजिए, ऐसे बोलती है, अब तुम यहीं रहो नंदगांव में, मतलब शिव जी को खिलौना बना दिया उन्होंने, समझे आप, महादेव शिव शंभु को खिलौना बना दिया, और वो भी तैयार है खिलौना बनने के लिए, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं क्या बात है मैया, हम क्या इसके लायक है क्या कि आपके घर में बैठे रहें, जब आपका बालक रोएगा तो हम आके रिझाते रहें, हम तो भजन करने वाले बाबा हैं, हमारे पास समय ना है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, वहीं रह गए वो। तो जो नंदेश्वर का था ना स्थान वहाँ पर, वो वहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर भजन किया और वहाँ पर रुके हुए हैं। और मैया ने यह भी वादा किया कि जो जो भोग लगाऊंगी लाला का उसका प्रसाद भी आपको पहले दूंगी, जो जो दूध चढ़ाऊंगी जो भी है वो सब आपको भी पहले आपको देंगे, किसी को देने के पहले आप यहीं रुको। तो शिव जी महाराज भी रुक गए। तो शिव जी महाराज ने यहाँ पर ना भगवान को कैसे पुकारा जाता है उसका एक उदाहरण स्थापन किया है। हम लोग जब भगवान को पुकारते हैं तो हम खुद सो जाते हैं, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे। हम पुकारते समय ही सो रहे हैं तो पुकार में कैसे दम कैसे आएगा। हाँ, मैं आपको बुला रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो आप आएंगे क्या भाग के। तो सो रहा है, बुलाने का बहाना है लेकिन सोना है उसको। तो कैसे भगवान को पुकारना चाहिए, कैसे जप करना है, उसका प्रमाण यहाँ पर दिया उन्होंने। एक बात जरूर आप यहाँ से ले जाना आपके साथ कि भगवान के नाम का जप करना मतलब भगवान को पुकारना है। जप करना एक जगह पर है, पुकारना दूसरी जगह पर है। वी शुड चैंट द होली नेम टू कॉल द लॉर्ड, संबोधन कहते हैं उसको, सप्तमी है वो संबोधन। हर नाम हम भगवान को पुकारने के लिए यूज करना चाहिए। हरे कृष्ण में पुकार रहे हैं भगवान को, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारी ओर, उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए। इसलिए केवल माला नहीं फेरना, कितनी हो गई, तीन हो गई, कितनी हो गई, चार हो गई, कितनी बाकी है, तीन बाकी है, अभी भी बाकी है, 11 बज गए फिर भी बाकी है, ऐसा मत करना। पुकारना उनको हृदय से, पुकारना बिस्तर से, जंप करना सुबह उठ के और पुकारना शुरू कर देना जैसे ही उठते हैं वैसे। पुकारने के लिए जिंदगी है, और कोई पुकार दे क्या? बंदर पुकार दे कि गाय पुकारती है कि भैंस पुकारती है, क्या कौन पुकारता है? क्या किसको पुकारने की क्षमता दी है भगवान ने? आपको दी है भगवान ने पुकारने की शक्ति। पुकारो और यहां पे आके पुकारो, जोर जोर से पुकारो, ताकि वो भी ऐसी कोई लीला रचे कि आपको दर्शन दे आके, है ना। जो चीज इम्पॉसिबल थी मैया के द्वारा दर्शन प्राप्त होने की, वो भगवान ने पॉसिबल कर दी अपने ट्रिक से। वो शंकर जी को पता नहीं है अभी क्या करेंगे ठाकुर जी, तो दर्शन देना भी चाहेंगे तो माता जी के अभेद्य कवच में बैठे हुए हैं, कैसे दर्शन देंगे। लेकिन आपकी कल्पना में नहीं होगा, ऐसा उपाय करके भगवान आपको दर्शन देंगे, अगर आप चाहते हो तो, अगर आप रोते हो तो शिव जी की तरह, अगर आप यहाँ वहाँ देख के जब कर रहे हो एकादशी में क्या बन रहा है, पता नहीं दोपहर में क्या बनेगा, सुबह में खिचड़ी थी, दोपहर में क्या देंगे पता नहीं, बहुत भूख भी लग रही है, व्रत भी बहुत मुश्किल होता है, ठंड में घूमना पड़ता है, ज़्यादा भूख लगती है, और एकादशी का व्रत भी है, अभी क्या यात्रा में व्रत आता है, क्यों आता है ऐसे ऐसे करते करते हमारा जप होता है। फिर ऐसा सोचने के बाद देखेंगे ना, चार माला ऑलरेडी आगे चली गई है, फिर और कुछ सोचते हैं उसमें दो माला आगे चली जाती है, फिर खुद गहरा विचार करते हैं उसकी 16 माला पूरी हो जाती है। तो ना गहरा चिंतन किया कि मग्न होकर हाथ भी कहते 16 माला नीचे अपने आप, होता है ना ऐसे कभी, बहुत बार, रोज ही होता रहेगा शायद क्या मालूम, हमारा मन में ना ऐसे पैरेलल लाइन चलते रहते हैं। हाँ, एक तरह हरे कृष्णा, फिर वो अपनी जबान को, कान को, सबकी आदत बन जाती है, दिल को होना जरूरी नहीं है उसके अंदर, ऐसा हो जाता है वो ऑटोमेटिक। और ऐसा ऑटोमेटिक होता है कि वो लास्ट वाला मणि आ गया है, आप यहाँ पर लग गया ना, अपने आप ये मणि नीचे भी हो जाता है, आपको भी खबर नहीं पड़ेगी, अरे अपने आप हाथ चलते रहते मशीन की तरह। दिल जब आएगा ना उसके अंदर, तब भगवान आएंगे, वो दिल के साथ आएंगे, आप दिल डालेंगे वहां से भगवान आएंगे। इसलिए उनको दिल से पुकारो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना करो शिव जी से आप यहाँ पर कि हमें वो जो कशिश है ना दिल की, वो दे दें, जिससे हमारा भगवान नाम के प्रति पुकारने का भावना बने। देते दे सकते हैं आपको, हाँ देने के लिए बैठे हैं। लीला में भगवान ने उनको सहभाग दिया है, एक प्रमाण सिद्ध करने के लिए उन्होंने, भगवान ने उनको लीला में बुलाया है। ये भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो जो भी कुछ करते हैं ना, हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा दे के जाते हैं। तो उनसे प्रार्थना करो, महादेव हैं वो, हाँ परम वैष्णव है भगवान के, परम वैष्णव है। एक तरफ से अपना ड्यूटी कर रहे हैं, जब विनाश काल होता है तो विनाश कर देते हैं, तांडव करते हैं, अपना वो ड्यूटी है उनका, एक दूसरा हिस्सा है उनका, ऑफिशियल पार्ट है वो। लेकिन हृदय क्या है उनका? हृदय तो वैष्णव का है। वो बार बार आते हैं, ऐसे कहते हैं कि वो जब जन्म होता ना ठाकुर जी का, तो उधर तभी भी आए थे वो, और कहते हैं कि तभी ना नंद महाराज ऐसे लुटा रहे थे, जो भी था सब लुटा रहे थे, दान जिसको देख रहे हैं दान दे रहे हैं उसको, सबको, गाय का दान कर रहे हैं, हाँ हाथी घोड़े का दान कर रहे हैं, रत्नों का कर रहे हैं, माणिकों का कर, लुटा रहे हैं उनको। तो ये शिव जी आए तो नंदी को लेकर आए ना, और नंदी की पूछ पकड़ के खड़े हैं, बताओ क्यों? वे भी दे, इसको भी दे देंगे किसी को, तो पकड़ के खड़े हैं उसको, ये भाई ये हमारा है। पार्वती जी भी आई है, वो गणेश जी को गोद में लेके खड़ी है, ये हाथी का दान दे रहे हैं, ये हाथी को भी दे देंगे दान, तो उसको गोद में लेके खड़ी, भाई ये मेरा हाथी है। ऐसा है सब आनंद यहाँ का, चुप चुप के भैंस बदल के आते हैं, आनंद देखने को आते हैं, ठाकुर जी के धाम में क्या हो रहा है, ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, कितनी रुचि है उनको समझने में, है ना। ये जीवन है, दिस इज रियल लाइफ। ठाकुर जी के विषय में इंटरेस्ट होना और वैसे जीवन जीना, यही रियल जिंदगी है, बाकी सब बेकार की जिंदगी है, फंसाने वाली जिंदगी है और नुकसान करने वाली जिंदगी है। इसलिए जीना है तो ठाकुर जी के लिए जियो, लिव फॉर द लॉर्ड, नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली भी जन्म लेते हैं, वो भी जीते हैं, सब जीते हैं, सब बुड्ढे होते हैं, सब मर जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा झंडा फहर रहा है, बताओ। ऐसा जिंदगी जियो कि भगवान भी आपने आपको देखने को आ जाए, जैसे ऐसा रोए वो कि उनको भेजना पड़ा निमंत्रण देकर, वो भी रुक नहीं सकते, इतना खुद रोए, कितना एनर्जी खर्च किया भगवान ने रो रो के, है ना। ऐसा रोऊंगा ना ये सुरक्षा कवच भी भेद हो जाएगा, माता का अभेद्य कवच भी टूट जाएगा और माता ही बुलाएगी जिसको भगा दिया है, ऐसा भगवान ने लीला किया है। आप भी करो, आप भी पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके आगे और एक जगह है, इसका नाम है टेर कदम्बा, उसके भी कहानी यहाँ बता देते हैं। जब ठाकुर जी ने 5 साल की उम्र तक ना छोटे बछड़ों को 2 मिनट में हो जाएगा अभी, 5 साल के उम्र तक ठाकुर जी ने बछड़े को चराया, बछियों को छोटे छोटे, और गोपाष्टमी के दिन उनको बड़ी गाय दी गई चराने के लिए। तब तक वो छोटे छोटे एरिया में गाय चराते थे, जब बड़े हो गए, बताया कहानी मैंने आपको, क्या बताया? नहीं ना, वही कौन से ग्रुप को कौन सी कहानी बताई वही समझता नहीं मुझे, है ना, हर बार ग्रुप अलग है, कहानी एक ही है। इसलिए पूछता हूँ, क्या आप डबल तो नहीं हो रहे आपको? तो जब गोपाष्टमी आई, 5 साल के हुए भगवान, तो फिर भगवान को बड़ी गायों का बड़े विधि पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सेवा दिया गया। तो भगवान दूर जाने लगे, तो जब लौट के आते थे ना दूर से, तो उधर कदम का पेड़ है, बहुत ऊंचा था वो आकाश में, तो नंदगांव के पास है ना, दूर से आ रहे हैं तो एक नंदगांव का एक लास्ट जगह है जहाँ पर, जहाँ से आपको साथ में जाना है, तो वहाँ पर की डाली में बैठ कर ना मुरली बजाते थे, छठवा स्वर बताते थे। छठवें स्वर से क्या होता है? छठवें स्वर से दो बातें होती हैं, एक तो पत्थर पिघल जाता है, और छठवें स्वर बजाने से गायें भाग भाग के आती है। तो ऐसा भगवान की मुरली का महात्म्य है कि वो छठवा स्वर जब बजाते थे तो आपको कैसा पड़े सुनाई पड़ेगा ना आपको, लेकिन उस आवाज में हर एक गाय को अपना नाम सुनाई पड़ रहा है, आपका नाम क्या है, तो आप अगर गाय होते तो आपको वो मुरली की आवाज में कोमल सुनाई पड़ेगा, आपका नाम क्या है, आपको भारती सुनाई पड़ेगा। ऐसे हर गाय का एक नाम था, और हर एक गाय को लग रहा था कि मुझे नाम से पुकार रहे हैं मुरली से, वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत नाम पुकारने की वजह से भाग के आते थे। कैसे आते थे मालूम है? आंखें ऐसी बड़ी बड़ी, कान ऐसे ऊपर, मुरली की अमृत को पी रहे हैं पूरा, और पूंछ ऐसे ऊपर, भाग के आके ऐसे खड़े हो जाते थे, सब लोग ऐसे मुंह खुला और सुन रहे हैं मुरली की तान को। फिर सबको इकट्ठा करके वो नंदगांव जाते थे यहां से, तो वो जगह है टेर कदम, इतनी सुंदर जगह है, इतना सुंदर भाव है भगवान का। ऐसे कहते हैं जब मुरली बजाते थे ना भगवान, तो जब गाय चर रही ना, अभी जाने का समय आ गया तो मुरली बज रही है, तो सबको आना है, लेकिन कुछ कुछ गाय ना ऐसे स्तंभित हो जाती थी, स्टंड कंप्लीटली, होता है ना कभी ऐसा कुछ समय के लिए। तो स्तंभित मतलब क्या, कुछ गाय के बछड़े का मुंह गाय के थन को लगा हुआ है और वो दूध पी रहा है और वो भी ये सुनता है, तो कान खड़े होते हैं, मुंह ऐसा, तो मुंह में दूध है गाय का, अभी चूसा ना दूध, वो मुंह में है लेकिन मुंह तो खुला रख गया, तो एक एक बूंद टपकती थी और पृथ्वी पर वो गाय के मुंह का प्रसाद दूध का जो है ना वो पृथ्वी पर गिरता था। कान खड़े, पूंछ खड़ी, मुंह खुला, मुंह में दूध और टपक रहा है नीचे। उसकी माता भी है ना ऐसी, पूंछ खड़ी, कान खड़े, आंख खड़ी और आवाज की ओर ध्यान लगा रहा है, ऐसी अवस्था होती थी, दिव्य अवस्था, भाव से संपृक्त अवस्था, सैचुरेटेड कंप्लीटली। फिर भगवान उतरते थे, क्योंकि इतना सब होने पर भी, सुनने पर भी कुछ गायें जानबूझकर सुनकर अनसुनी करती थी, फिर वो जाकर उनको पर्सनली जाकर उनको थपथपाकर लेके आते थे, क्या कहते हैं उसको, अटेंशन सीकिंग, उनको भगवान का एक विशेष अटेंशन चाहिए, तो वो भी देते थे सबको, ऐसे ऐसे थपथपा के लेके आते, फिर सबको इकट्ठा करके गीत गाते हुए मुरली बजाते हुए फिर नंद भवन की ओर जाते थे। टेर का मतलब क्या होता है, पुकारना, उसका मतलब होता है टेर, टेर लगाई, तो वो भगवान टेर लगाते थे अपने भक्तों को, गायों को बुलाने के लिए, तो वहां जाकर हमको टेर लगाना चाहिए, सुन लो टेर हमारी, हे भगवान सुन लो, हम पुकार रहे हैं आपको, सुन लो हमारी पुकार को और उद्धार कर लो हमारा, तो वहां पर भी जाएंगे, वो ग्वाल बालों की बहुत पसंदीदा स्थान है, वो सब ग्वाल बाल वहां पे आके आनंद लेते हैं, भगवान के 108 कलर प्रकार के गाय के झुंड हैं, अपन क्या मतलब मराठी, कड़प कड़प, 108 डिफरेंट डिफरेंट गायों के झुंड हैं और सब गाय भगवान के सेवा में आती है, इत गाय उत गाय, हाँ दोनों तरफ से गाय चलती हैं, और वर्णन आता है कि दोनों तरफ कहीं से भी चलेंगे ना सबका नजर भगवान की ओर रहता है, उसको देख देख के चलते हैं, यही जीवन है, आंखों के लिए विषय भगवान है, कानों के लिए विषय भगवान का आवाज, भगवान की, भगवान का नाम का श्रवण है, मुंह के लिए विषय भगवान का नाम उच्चारण करना है, नाक से भगवान को दिए हुए फूल को सूंघने का विषय है, त्वचा के लिए बताइए क्या है, स्पर्श करना है भगवान का, रज का, धाम की हवा का स्पर्श हो रहा है, ये सब विषय भगवान ही होना चाहिए, पांचों इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का जो भी है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का जो विषय है उसका भगवान ही विषय होना चाहिए, और विषय उनका वही विषय है, लेकिन हमने वो छोड़कर दूसरा विषय बना दिया है, फिर हम टीवी देखते हैं, फिर हम दुनिया के औरतों को देखते हैं, आदमी को देखते हैं, दुनिया के चकाचौंध चीजों को देखते हैं, और वो चाहते हैं कुछ सुनते हैं, ये सारे विषय छोड़कर सारे इंद्रियों के लिए केवल भगवान का विषय होना चाहिए, तब जाकर जिंदगी शुरू होती है, उसके पहले को जिंदगी को जिंदगी नहीं कहते हैं, रियल जिंदगी जो है ना वो तब शुरू होती है जब भगवान को विषय बनाते हैं इंद्रियों के लिए, फिर वो हृदय का विषय बन जाते हैं इंद्रियों के माध्यम से, मन का विषय बन जाते हैं, बुद्धि का विषय बन जाते हैं, चित्त का विषय बन जाते हैं, तब जीवन सफल होता है, तो बाकी अपना जीवन तो सब जी रहे हैं, हाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, जीना है मरना है, बार बार माँ के गोद में गर्भ में प्रवेश करना है दुख भोगने के लिए, तो चलते रहता है सिलसिला, उसको कट करने के लिए ये जिंदगी है मनुष्य की जिंदगी, ताकि इसी जिंदगी में हम उनके पास पहुंच जाए, तो वहां चलेंगे टेर कदम में, पुकारेंगे भगवान को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।